डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 9, रहस्योद्घाटन 4 और 5, 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 9 है, प्रकाशित वाक्य 4 और 5 जारी है। विभिन्न तरीकों से हम 24 बुजुर्गों को समझ सकते हैं। मेरी राय में जिन 4 विकल्पों का हमने सर्वेक्षण किया, उनमें से स्वर्गदूत प्राणी 1 इतिहास के पुजारियों के 24 पाठ्यक्रमों पर आधारित थे। स्वर्ग में चर्च को घटनाओं से पहले हटा दिया गया था या हटा दिया गया था। अध्याय 4 से 22, चर्च में इसराइल के स्वर्गीय प्रतिनिधियों के रूप में 24 बुजुर्ग और स्वर्गदूत प्राणी जो स्वर्गीय दरबार से संबंधित हैं। इनमें से मुझे किसी एक को सटीक रूप से बताना कठिन लगता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर शायद नंबर 1 और नंबर 3 का संयोजन, शायद 4 भी, तो मुझे 4 को बाहर करना मुश्किल होगा। एक स्वर्गीय अदालत का विचार, विशेष रूप से यशायाह 24 से 23 में बड़ों के उल्लेख के साथ संबंध, लेकिन वह किसी भी स्थिति में ये देवदूत प्राणी होंगे जो भगवान की पूजा करते हैं और जो पृथ्वी पर भगवान के लोगों के स्वर्गीय प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा अध्याय 4 और अध्याय 5 में जो चल रहा है, उसमें एक और दिलचस्प मोड़ भी है। यह दिलचस्प है और इससे हमें 24 बुजुर्गों के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करने में भी मदद मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि रोमन दुनिया के संदर्भ में सम्राट को चित्रित करने वाली कुछ छवियों और साहित्य में सम्राट को अक्सर लिक्टर्स के साथ वर्णित किया गया है, या निकटतम चीज मूल रूप से अंगरक्षक होगी। इसलिए जहां सम्राट अक्सर स्थानों पर जाते थे या कुछ भोजों या सार्वजनिक कार्यक्रमों में लिक्टर्स या अंगरक्षकों से घिरे होते थे। दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार सुएटोनियस के अनुसार डोमिशियन के पास 24 लिक्टर्स थे जो अक्सर उसके साथ रहते थे। तो क्या ऐसा है कि डोमिशियन अक्सर ये लिक्टर्स उसका अनुसरण करते थे, या जब डोमिशियन खेलों या अन्य कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते थे तो अक्सर उनके साथ पुजारी भी होते थे जिन्हें दिलचस्प ढंग से सुनहरे मुकुट पहने हुए बताया जाता था। वास्तव में एशिया माइनर के एक अन्य साहित्य में सम्राट पंथ को चलाने वाले पुजारी, सम्राट पंथ के लिए जिम्मेदार पुजारियों को भी अक्सर स्वर्ण मुकुट पहने हुए चित्रित किया गया है। तो क्या यह संभव है कि जॉन ने एक ऐसी छवि का निर्माण किया है जो पुजारियों के 24 पाठ्यक्रमों या स्वर्गीय परिषद और ईश्वर के लोगों के स्वर्गीय प्रतिनिधियों के रूप में देवदूत प्राणियों की पुराने नियम की पृष्ठभूमि से संबंधित है? और वह, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसी छवि का उपयोग किया है जो यह दर्शाती है कि ग्रीको रोमन पृष्ठभूमि में क्या चल रहा था। तो उस ईश्वर की तुलना वास्तव में डोमिनेटियन से की जा रही है यदि वह सम्राट शासन कर रहा है। तो अध्याय 4 में फिर से यह अधिक ईंधन है, अध्याय 4 के प्रतिशाही होने की आग में और अधिक ईंधन जोड़ता है। हालांकि यह कहना बेहतर होगा कि ईश्वर की तुलना डोमिनेटियन से नहीं की जा रही है, जितनी कि इसके विपरीत डोमिशियन की तुलना ईश्वर से की जा रही है और डोमिशियन का शासन छोटा पड़ता नजर आ रहा है। ईश्वर के शासन का सीजर द्वारा विरोध किया जाता है। ईश्वर के शासन का सीजर द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन सीजर एक खराब पैरोडी है, या सीजर ईश्वर के शासन की एक खराब नकल है जो सीजर के साथ संघर्ष में है। इसलिए सीजर को ईश्वर के शासन और ईश्वर के शासन के समान ही वर्णित किया जा सकता है। तो फिर से जॉन जानबूझकर ऐसी कल्पना का चित्रण कर रहा है जो यहूदी पृष्ठभूमि को उजागर करती है, लेकिन ग्रीको रोमन पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट करती है, ताकि ईश्वर और सीजर और प्रभारी कौन है जो वास्तव में ब्रह्मांड का शासक है के बीच संघर्ष को प्रदर्शित किया जा सके। यह सीजर नहीं है जो अपने दल से घिरा हुआ है, बल्कि अब यह ईश्वर है जो अपने सिंहासन पर बैठा है, जो स्वर्गदूत प्राणियों के अपने दल से घिरा हुआ है, जो सीजर के सीधे विपरीत में उसकी संप्रभुता की पूजा करते हैं और स्वीकार करते हैं। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि सभी विवरणों में जाए बिना अध्याय 4 और 5 का पूरा दृश्य फिर से एक ही स्तर पर हो सकता है। हालांकि हमने अध्याय 4 और 5 को देखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर यहेजकेल एक और से स्वर्गीय सिंहासन कक्ष पर आधारित है। 2 और यशायाह अध्याय 6। साथ ही प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 और 5 भी रोमन दुनिया में ज्ञात अदालती दृश्यों से भिन्न हो सकते हैं। कार्यों की एक श्रृंखला जो कुछ लेखों से शुरू होती है और वर्ड बाइबल कमेंट्री श्रृंखला में उनकी प्रमुख टिप्पणी के साथ समाप्त होती है। पहला खंड जो अध्याय 4 और 5 को कवर करता है। डेविड ओने ने तर्क दिया है कि 4 और 5 में जो कुछ मिलता है वह उससे मिलता जुलता है। हम जानते हैं और हम रोमन दुनिया में अदालत के दृश्यों के बारे में क्या जान सकते हैं, जहां ओने का सुझाव है कि सीजर को उसके सिंहासन पर बैठाया गया होगा। वह इन लिक्टर्स या पुजारियों के समान अपने दोस्तों से घिरा हुआ होता। वह अपने दोस्तों से घिरा रहता। उसके दोस्तों और उसके आसपास के लोगों ने सीजर, जो अपने सिंहासन पर बैठा था, की प्रशंसा और प्रशंसा के शब्द चिल्लाए होंगे। और अब इसकी प्रत्यक्ष नकल में भगवान को अपने सिंहासन पर चित्रित किया गया है, जो अपने अनुयायियों या अपने दोस्तों, अपने दरबारियों से घिरा हुआ है, और वे अब भगवान की स्तुति और प्रशंसा के शब्द चिल्ला रहे हैं। तो यह परमेश्वर है जो राजा है और सीजर नहीं है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, यह इतना अधिक नहीं हो सकता है कि भगवान का सिंहासन सीजर की नकल है और इसके विपरीत। सीजर के सिंहासन को एक भड़वा, एक घटिया भड़वा और भगवान के सिंहासन की कमी के रूप में देखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां स्पष्ट रूप से साम्राज्य विरोधी बयानबाजी चल रही है। जैसा कि मैंने कहा, जॉन संभवतः स्वर्गीय सिंहासन कक्ष के एक दृश्य का निर्माण करने के लिए पुराने नियम की कल्पना और ग्रीको रोमन कल्पना दोनों का चित्रण कर रहे हैं, जहां भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं और स्वर्गीय दरबार के सभी निवासी भगवान को घेरते हैं और उनकी पूजा करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड पर संप्रभु निर्माता और शासक के रूप में उसकी संप्रभुता को स्वीकार करें। सिंहासन के आसपास के वातावरण के इस हिस्से के संबंध में ध्यान आकर्षित करने वाली दूसरी विशेषता कांच के समुद्र या कांच के समुद्र का संदर्भ है, जो श्लोक 4 से शुरू होता है। सिंहासन के चारों ओर 4 अन्य सिंहासन हैं, जिनमें 24 बुजुर्ग बैठे हैं और वे श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे। सिंहासन से बिजली की चमक आदि निकली। सिंहासन के सामने जलते हुए दीपक थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इसके अलावा सिंहासन के सामने कांच का समुद्र जैसा दिखता था। मैं 7 आत्माओं को छोड़ने जा रहा हूं। हम पहले ही उसका परिचय देख चुके हैं। हमने कहा कि 7 आत्माएं शायद भगवान की 7 गुना आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं और 7 अलग अलग आत्माएं नहीं, बल्कि 7 पूर्णता और पूर्णता के प्रतीक की छवि हैं। यहां परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता है, परमेश्वर के सिंहासन के संबंध में परमेश्वर की पूर्ण भावना। लेकिन मैं जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह वास्तव में 2 विशेषताएं हैं, जिसकी शुरुआत इस शीशे जैसे समुद्र से होती है। संभवतः कांच का समुद्र मंदिर की कल्पना को आगे बढ़ाता है। यह संभवतः सोलोमन के मंदिर में बेसिन या हौद का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कांच का यह समुद्र फिर से एक विशेषता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे हम यहेजकेल के अध्याय 1 में उसके सिंहासन के दर्शन के विवरण में पाते हैं। यहेजकेल अध्याय 1 और श्लोक 22 में, और जैसा कि हमने कहा, जॉन भारी रूप से निर्भर है। यहेजकेल अध्याय 1 और 2 पर, विशेष रूप से अध्याय 4 और 5 में जॉन के स्वयं के दर्शन में जो कुछ वह देखता है उसका वर्णन करने के लिए। लेकिन अध्याय 1 और श्लोक 22 में, मैं श्लोक 19 से शुरू करूंगा, जब जीवित प्राणी चले गए तो यह एक तरह की आशा करता है अगला समूह जिसे हम जीवित प्राणियों के लिए देखेंगे। परंतु जब जीवधारी चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तो पहिए भी उठते थे। लेकिन अब मैं श्लोक 22 पर आता हूँ। जीवित प्राणियों के सिरों के ऊपर फैला हुआ एक विस्तार सा दिखाई दे रहा था, जो बर्फ की तरह चमक रहा था और भयानक था। तो एक विशाल जगमगाते हुए दृश्य का यह दृश्य जॉन के कांच जैसे समुद्र जैसा हो सकता है, या उसकी प्रेरणा हो सकता है जिसे वह अब देखता है। लेकिन फिर इसे सिर्फ एक तक सीमित रखने का शायद कोई कारण नहीं है। मंदिर की जो कल्पना मिलती है उसे देखते हुए, यदि यह सिंहासन कक्ष का दृश्य भगवान का मंदिर है तो सुलेमान के मंदिर में बेसिन की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से एक उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करेगी। लेकिन चूंकि वह यहेजकेल 1:22 पर चित्रण कर रहा है, यह चमचमाता विस्तार जॉन जो देखता है उसके लिए पृष्ठभूमि भी प्रदान कर सकता है। एक और संभावित पृष्ठभूमि लाल सागर होगी, जिसके बारे में मैं तर्क दूंगा कि यह रहस्योद्घाटन में कहीं और भूमिका निभाता है। वास्तव में मुझे लगता है कि यह रहस्योद्घाटन के अध्याय 15 और श्लोक 2 में और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जहां दिलचस्प बात यह है कि आप संतों को स्वर्ग में अध्याय 15 से शुरू करते हुए विजी खड़े हुए देखते हैं। 15:1, मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थीं, हाँ, उन पर परमेश्वर का क्रोध पूरा हुआ। अब इसे सुनो, 2, और मैंने कांच के समुद्र जैसा कुछ देखा। अध्याय 4 से आग से मिश्रित होकर और समुद्र के किनारे खड़े होकर, जो उस पशु और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, और उन्होंने परमेश्वर की दी हुई वीणाएं पकड़ रखी थीं, और उन्होंने मूसा का गीत गाया, भगवान का सेवक। तो अध्याय 15 में आपके पास एक नए पलायन में संतों की यह तस्वीर है, जो बुराई के उत्पीड़न और शैतान और जानवर और दमनकारी रोमन साम्राज्य से मुक्त हो रहे हैं। अब वे समुद्र के किनारे मूसा और इसराइलियों के समान विजी हुए हैं, और वे इसराइलियों के समान मूसा का गीत गाते हैं। तो यह कहते हुए कि यह भी हो सकता है, अध्याय 4 में यह कांच जैसा समुद्र लाल सागर की भी आशा कर सकता है, और इसका मुद्दा शायद यह है, मुझे लगता है बस यही है। रहस्योद्घाटन में समुद्र अक्सर देखा जाता है, और मुझे लगता है कि यह था। यह सच है कि निर्गमन वृत्तांत में भी समुद्र को अक्सर ऐसी चीज के रूप में समझा जाता है जो बुरी है। बाद में एक जानवर समुद्र से बाहर आएगा। समुद्र उस रसातल के समान प्रतीत होता है जहां से राक्षसी प्राणी आते हैं, जहां से बुराई आती है। बाद में प्रकाशित वाक्य में समुद्र मृतकों का घर है। तो प्रकाशित वाक्य में समुद्र के सभी प्रकार के नकारात्मक अर्थ हैं, और आप इसे यहूदी साहित्य में भी पा सकते हैं। समुद्र समुद्री राक्षस का घर है, वह जानवर जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करने के लिए आता है। तो आप अध्याय 4 में जो घटित होता हुआ पाते हैं वह पहले से ही अराजकता का समुद्र है, और बुराई को पहले ही शांत और पराजित किया जा चुका है। तो परमेश्वर के लोगों को डरने की क्या जरूरत है? बुराई का समुद्र पहले ही वश में हो चुका है, और वह पहले ही शांत हो चुका है। एक तरह के पूर्वानुमान के लिए मुझे लगता है कि यह न केवल अध्याय 15 का अनुमान लगाता है जहां लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं, इसे शांत और वश में कर लिया गया है, बल्कि यह अध्याय 21 श्लोक 1 का भी अनुमान लगाता है जहां समुद्र अब नहीं था। यानी बुराई और अराजकता का समुद्र हटा दिया गया है ताकि भगवान अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में एक नया रचनात्मक कार्य करें। इसलिए यह विचार हालांकि भगवान के निवास में है, भगवान के मंदिर में सब कुछ शांत है। प्रकाशित वाक्य में जो समुद्र परमेश्वर के लोगों के लिए समस्याएं पैदा करेगा, उसे परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संप्रभुता द्वारा पहले ही वश में कर लिया गया है और शांत कर दिया गया है। संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करने वाली दूसरी विशेषता गड़गड़ाहट और बिजली है, जो श्लोक 5 में सिंहासन से आती है। सिंहासन से बिजली की चमक और गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि निर्गमन और माउंट सिनाई का एक और संकेत स्पष्ट रूप से थियोफनी को इंगित करता है। यह भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि अध्याय 4 भी अपने सिंहासन पर भगवान का एक दृश्य है जो न्याय करने के लिए तैयार है। और अध्याय 6 से शुरू करके हम फिर से देखेंगे कि क्या होता है। भगवान अपने राज्य की स्थापना में इस सृष्टि और दुष्ट मानवता का न्याय करना शुरू करते हैं। इसके बाद यह हमें श्लोक 6-8 में अगले समूह के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है, और वह है 4 जीवित प्राणी। यह अपने सर्वोत्तम रूप में सर्वनाशकारी प्रतीकवाद है। फिर आपके पास ये जीव हैं जिनमें जानवरों की विशेषताएं हैं, उनमें मानवीय विशेषताएं भी हैं। इनमें से एक शेर जैसा दिखता है, एक बैल जैसा दिखता है, एक इंसान जैसा दिखता है, दूसरा उड़ते हुए बाज जैसा दिखता है। उन सभी के 6 पंख हैं, उनकी हर तरफ नजर है। वे वास्तव में बहुत ही अजीब प्राणी हैं। फिर यह अपने सर्वोत्तम रूप में सर्वनाशकारी प्रतीकवाद है। स्पष्टतः जॉन ने यहेजकेल अध्याय 1 से इसकी प्रेरणा ली है। हम पहले ही यहेजकेल में जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन साथ ही यशाया अध्याय 6-6 पंखों आदि की कुछ भाषाएं सामने आती हैं। इसलिए फिर से जॉन अपने भविष्यवक्ता पूर्ववर्तियों का उपयोग करके एक दृश्य का निर्माण कर रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसने जो देखा वह अतीत के अन्य भविष्यवक्ताओं के साथ निरंतरता में है। फिर से वह एक तरह से उनका कार्यभार संभाल रहा है, लेकिन अब जॉन यीशु मसीह की पूर्णता के प्रकाश में लिखता है, जो अध्याय 5 में दृश्य पर दिखाई देगा। मुझे लगता है कि तब आपके पास जो कुछ होगा वह यह चित्र है जिसे जॉन ने बनाया है। हमने कहा कि सिंहासन केंद्र में है, और संकेंद्रित वृत्तों को विस्तृत करने में आपके पास अगले 24 बुजुर्ग हैं। फिर मुझे लगता है कि हमें उनके बाहर के 4 जीवित प्राणियों का चित्र बनाना चाहिए, और प्राणियों और बड़ों का कार्य एक ही है, उन्हें दिन रात परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उन्हें ईश्वर की निरंतर स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी चीजों का निर्माता है, और क्योंकि वह अपनी सारी सृष्टि पर संप्रभु शासक है। ईजेकील और यशायाह की पृष्ठभूमि को देखते हुए हम शायद इन 4 जीवित प्राणियों को 24 बुजुर्गों की तरह देवदूत प्राणियों के रूप में समझ सकते हैं। और फिर जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि सटीक रूप से या सटीक रूप से पता लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वे कौन हैं, या उन्हें पहचानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनकी प्रशंसा, निरंतर प्रशंसा और उस पर बैठे व्यक्ति की पूजा के कार्य को पहचानना है। सिंहासन। एक प्रश्न जो उठाया जा सकता है वह यह है कि 4 क्यों? प्रतीकवाद की हमारी चर्चा पर वापस जाने के लिए हमने कहा कि रहस्योद्घाटन में संख्याओं को उनके सख्त गणितीय मूल्य या संख्यात्मक परिशुद्धता के लिए नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उनके अर्थ के लिए लिया जाना चाहिए। हमने देखा कि संख्या 4 एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण पृथ्वी का प्रतीक है। यह संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये चारों, जैसे कि पृथ्वी के 4 कोने, सुझाव देते हैं कि ये 4 जीवित प्राणी संभवतः स्वर्गीय देवदूत प्राणी हैं जो सभी निर्मित व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सारी सृष्टि, सारी चेतन सृष्टि और सारे जीवन का स्वर्गीय प्रतिरूप है जो अब इन चार जीवित प्राणियों द्वारा दर्शाया गया है और यह उनकी पहचान से सुझाया जा सकता है। तथ्य यह है कि एक शेर है, एक बछड़ा है, एक आदमी है और एक बाज है, फिर से चेतन सृजन के पूर्ण स्पेक्ट्रम का सुझाव दे सकता है। अब जबकि चार जीवित प्राणी उस निरंतर स्तुति की पेशकश के प्रतिनिधि हैं, दिलचस्प बात यह है कि फिर से सार्वभौमिक स्तुति और पूजा की प्रत्याशा है जो अंततः इस वर्तमान पृथ्वी पर घटित होगी। एक वर्तमान पृथ्वी जो अब इस समय भगवान की संप्रभुता और भगवान की पूजा का विरोध करती है। तो इन सबका मुद्दा यह है कि संपूर्ण स्वर्ग परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करता है। संपूर्ण स्वर्ग या स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मांड पर निर्माता और शासक के रूप में भगवान की संप्रभुता को पूरे स्वर्ग द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, पूजा की जाती है, स्तुति की जाती है और भगवान की पूजा की जाती है। छंद 8-11 फिर कुछ स्थानों पर ठीक वही चित्रित करते हैं जो 24 बुजुर्ग और चार जीवित प्राणी अपनी पूजा में कहते और व्यक्त करते हैं। और फिर अगर मैं श्लोक 8 शुरू करके पढ़ सकता हूँ तो चार जीवित प्राणियों में से प्रत्येक दिन और रात यह कहना कभी नहीं बंद करेगा, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था और जो आने वाला है। और जब प्राणी ऐसा करते हैं तब 24 प्राचीन झुकते हैं और पद 11 में वे यही गाते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा आदर और शक्ति पाने के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं बनाई और तेरी ही इच्छा से उन्होंने बनाए गए थे और उनका अपना अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में मुद्दा यह है कि ईश्वर पूजा के योग्य है क्योंकि वह जो कुछ भी है उसका सर्वशक्तिमान निर्माता है। वह पवित्र संप्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो सभी का निर्माता है और जो सारी सृष्टि पर संप्रभु है, और इसी कारण से परमेश्वर आराधना के योग्य है। दूसरे शब्दों में अगर मैं एक पल के लिए देहाती हो सकता हूँ जब हम पूजा के संदर्भ में सोचते हैं और हम क्यों पूजा करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि किसी तरह भगवान को हमारी पूजा की आवश्यकता है, कि भगवान बस अपने प्राणियों के आने और पूजा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह हमारी आराधना का पोषण करता है और किसी तरह उसे हमारी आराधना की आवश्यकता है, या कि भगवान ऊपर देख रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम अपनी पूजा सही तरीके से करें, कि हम सही पूजा गीत गाएं और कि हम सही तरीके से काम करें। ऐसा न हो कि भगवान निराश होकर चले जाएं क्योंकि उन्हें पूजा नहीं मिली जो वह चाहता था, या फिर से कि किसी तरह भगवान को अपने अहंकार को बढ़ावा देने या ऐसा ही कुछ करने के लिए हमारी पूजा की आवश्यकता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 हमें याद दिलाता है कि नहीं, हम ईश्वर की पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह इसके योग्य है और क्योंकि वह इसके योग्य है। भगवान को हमारी पूजा की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को अपने रचिता की पूजा से अहंकार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णता और व्यक्तिगत संतुष्टि पाने के लिए भगवान को हमारी पूजा की आवश्यकता नहीं है। उसे हमारी पूजा की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इतना अकेला है कि उसे अपनी कीमत पहचानने वाले की जरूरत है। इसके बजाय हम पूरी तरह से भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि वह इसके योग्य है, क्योंकि वह जो कुछ भी है उसका संप्रभु निर्माता है और क्योंकि वह पवित्र सर्वशक्तिमान भगवान है जो अपनी सारी सृष्टि पर संप्रभु है। केवल इसी कारण से चर्च को परमेश्वर की आराधना और आराधना करनी चाहिए जो सिंहासन पर बैठा है। तो एक अर्थ में प्रकाशित वाक्य 4 और 5 हमें एक सच्ची वास्तविकता की याद दिलाते हैं जो हमारी सांसारिक वास्तविकता से परे है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तव में नियंत्रण किसके पास है। यह हमें याद दिलाता है कि एक संदर्भ में और ऐसे माहौल में कौन वास्तव में हमारी पूजा के योग्य है, जहां इस पर विवाद है और हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो भगवान की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार करती है। रहस्योद्धाटन एक ऐसी दृष्टि से शुरू होता है जो वास्तव में वास्तविक और वास्तव में सत्य है, जो हमारी सांसारिक वास्तविकता से परे है। साथ ही प्रकाशित वाक्य 4 और 5 एक ऐसे दिन की आशा करते हैं जब सारी सृष्टि ईश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करेगी, जब सारी सृष्टि ईश्वर की पूजा उन सभी चीजों के निर्माता के रूप में करेगी, जहां ईश्वर की इच्छा पृथ्वी पर उसी तरह पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। अध्याय 4 और 5 हमें याद दिलाते हैं कि स्वर्ग में जो होता है वह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर पूरा किया जाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि पृथ्वी ने विरोध किया है और पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां इसका विरोध किया जाता है, लेकिन उससे पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 हमें याद दिलाते हैं कि अब हम परमेश्वर की आराधना में स्वर्ग से जुड़ते हैं। जब हम प्रभु की प्रार्थना के प्रकाश में आपका राज्य आते हैं, तो आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी होती है जैसे कि यह स्वर्ग में होती है। हालांकि हम अभी भी प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में इसकी प्रतीक्षा करते हैं। पहले से ही जब चर्च प्रकाशित वाक्य में या पहले में पूजा करने के लिए इकट्ठा होता है, सदी या किसी अन्य समय में, चर्च ईश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करने, पहले से ही ईश्वर की पूजा करने और यह स्वीकार करने में स्वर्ग में शामिल होता है कि ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर शासक है, जिसने इस पर विवाद किया और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अध्याय 4 और 5 पूजा के इस दृष्टिकोण को प्रदान करके अध्याय 4 और 5 हमारी सभी आधुनिक मूर्तियों को उजागर करता है और उखाड़ फेंकता है कुछ भी जो उस पूजा और संप्रभुता के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा जिसके केवल भगवान हकदार हैं, और हमें पूजा करने की याद दिलाते हैं और किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति या किसी समूह या राष्ट्र या इकाई के प्रति निष्ठा, उन्हें यह बताना कि वह पूजा और निष्ठा जिसका केवल ईश्वर ही हकदार है, मूर्ति पूजा से कम नहीं है। इस पाठ के बारे में कुछ अन्य रोचक बातें। सबसे पहले एक आधुनिक समय की लोकप्रिय धारणा को फिर से खारिज करने के लिए मुझे इस धारणा के साथ बड़ा किया गया था कि एक दिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हम अपना मुकुट यीशु के चरणों में डाल देंगे। और कुछ गीत ऐसे भी हैं जो अपना मुकुट यीशु के चरणों में अर्पित करने के विचार को दर्शाते हैं। मुझे लगता है कि एकमात्र स्थान, जब तक कि मैं गलत न हो, एकमात्र स्थान जहां आपको यह धारणा मिलती है वह प्रकाशित वाक्य 4 श्लोक 10 है, जहां वे सिंहासन के सामने अपने मुकुट रखते हैं। वह कौन है जो सिंहासन के सामने मुकुट रख रहा है? ये 24 बुजुर्ग हैं। 24 बुजुर्ग कौन हैं? यदि हम सही हैं कि वे देवदूत प्राणी हैं, तो नए नियम में परमेश्वर के लोगों द्वारा यीशु के चरणों में या परमेश्वर के चरणों में अपने मुकुट फेंकने की कोई तस्वीर नहीं है। यहां अध्याय 4 में देवदूत ही ऐसा करते हैं। फिर यह सच हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह धारणा गलत है या कुछ और। मुझे लगता है कि रहस्योद्धाटन के अध्याय 4 की उचित समझ से पता चलता है कि यह सिर्फ यह महसूस करने के लिए है कि यह संत नहीं है, यह भगवान के लोग नहीं हैं जो भगवान के चरणों के सामने अपना मुकुट डालते हैं, लेकिन यह उन 24 बुजुर्गों की अभिव्यक्ति है जो देवदूत प्राणी हैं, भगवान के लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो शायद निहितार्थ यह हो सकता है कि भगवान के लोग भी एक दिन ऐसा ही करेंगे। यह सच हो सकता, लेकिन मुख्य रूप से अध्याय 4 में यह स्वर्गदूत प्राणी हैं जो भगवान के सिंहासन को घेरते हैं और उनकी पूजा करते हैं जो अपने मुकुट डालते हैं, और वे ऐसा करते हैं। कम से कम इस बिंदु पर यह मुख्य रूप से भविष्य में भी होने वाला संदर्भ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अध्याय 4 अध्याय 21 और 22 में क्या होने वाला है, इसकी एक झलक या हम कह सकते हैं कि एक पूर्वानुमान भी प्रदान करता है। यह विशेष रूप से अंतिम भजन है जिसे 24 बुजुर्ग 4 में गाते हैं, लेकिन यह भजन भी जीवित प्राणी गाते हैं। लेकिन यह अंतिम भजन आप हमारे प्रभु और परमेश्वर के योग्य हैं कि वे महिमा, सम्मान और शक्ति प्राप्त करें, क्योंकि आपने सभी चीजें बनाई और आपकी इच्छा से वे बनाए गए और उनका अस्तित्व है। दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि हमने बाद में कहा, इंद्रधनुष का उद्भव, यदि यह अधिकांश टीकाकारों के अनुसार उत्पत्ति अध्याय 6 और बाढ़ के बाद के इंद्रधनुष की ओर इशारा करता है, जो भगवान की वाचा, सृजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, इन सभी को एक साथ रखकर दर्शाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तथ्य यह है कि भगवान को सभी चीजों के निर्माता के रूप में मनाया जाता है और पूजा की जाती है। इस तथ्य की भविष्यवाणी या सुझाव देता है कि भगवान नए रचनात्मक कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम और शक्तिशाली हैं, खासकर प्रकाशित वाक्य यह 21 और 22 में नई रचना। तो पहले से ही और फिर से इसे अपनी रचना के प्रति ईश्वर की वफादारी के प्रदर्शन के रूप में इंद्रधनुष के साथ भी लपेटा जा सकता है। पूजा के योग्य सभी चीजों के सर्वोच्च निर्माता के रूप में ईश्वर एक नई रचना करने में सक्षम है, जो वह वास्तव में प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में करेगा। तो यह तथ्य कि ईश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है, चारों ओर से घिरा हुआ है, उनका स्वर्गीय दल जो उनकी निरंतर प्रशंसा और पूजा करते हैं, जो समस्त सृष्टि पर संप्रभु शासक के रूप में, सभी के संप्रभु निर्माता के रूप में उनकी संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। अब हम अध्याय 5 पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह अध्याय 5 के लिए स्वर निर्धारित करता है। जैसा कि हमने कहा, अध्याय 4 अध्याय 5 में जो मिलता है उसके लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है या सेटिंग प्रदान करता है। इसलिए अध्याय 5 फिर एक निरंतरता है अध्याय 4 में दर्शन का। और जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, यह सिंहासन की छवि से जुड़ा हुआ है, वही सिंहासन जिससे अध्याय 4 शुरू होता है। जो सिंहासन पर बैठा है वह अध्याय 5 के श्लोक 1 से शुरू होता है, जहां जॉन कहता है, मैंने सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति के दाहिने हाथ को देखा। यह वही व्यक्ति है जिसका उसने उल्लेख किया है, या वही छवि है जिसका उल्लेख अध्याय 4 की शुरुआत में किया गया था। अब जैसा कि मैंने अध्याय 4 के साथ किया था, मैं आपको अध्याय 5 पढ़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप फिर से इस तरह की बात करें, आपकी आंखों के सामने तस्वीरें घूमती हैं और कल्पना करती हैं कि क्या हो रहा है, जैसा कि जॉन ने देखा और अब रिकॉर्ड किया है। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 श्लोक 1 में, फिर जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में मैंने एक पुस्तक देखी जिसके दोनों ओर लिखा हुआ था, और पुस्तक 7 मुहरों से बंद की गई। और मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को ऊंचे शब्द से यह प्रचार करते देखा कि कौन मुहरे तोड़ने और पुस्तक खोलने के योग्य है। परंतु न तो स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोल सका और न उसके भीतर झांक सका। मैं रोया और रोया, या मैं बहुत रोया, क्योंकि कोई भी इस योग्य नहीं पाया गया कि पुस्तक खोल सके या उसके अंदर झांक सके। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, रो मत, यहूदा के गोत्र का सिंह देख, दाऊद का मूल जयवंत हो गया है। वह पुस्तक और उसकी 7 मुहरें खोलने में सक्षम है। फिर मैंने दृष्टि की और देखा कि एक मेमना ऐसा लग रहा था मानो उसका वध कर दिया गया हो, वह सिंहासन के बीच में खड़ा था और 4 जीवित प्राणियों और बुजुर्गों के साथ घिरा हुआ था। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। वह आया और उसने जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली, और जब उसने उसे ले लिया तो 4 प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक के पास हृदय था और वे धूप से भरे सोने के कटोरे पकड़े हुए थे जो संतों की प्रार्थनाएं हैं। और उन्होंने एक नया गाना गाया, तू उस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है क्योंकि तू मारा गया है और अपने खून से तुम परमेश्वर के लिए लोगों को हर जनजाति और भाषा और लोगों और राष्ट्र के लोगों को खरीदते हो। तूने उन्हें हमारे परमेश्वर की सेवा करने के लिए याजकों का राज्य बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर मैंने देखा और मैंने कई स्वर्गदूतों की आवाज सुनी जिनकी संख्या हजारों हजारों और दस हजार और दस हजार थी। उन्होंने ऊंचे शब्द से सिंहासन, जीवित प्राणियों और पुरनियों को घेर लिया। उन्होंने गाया कि वध किया गया मेमना शक्ति, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और प्रशंसा पाने के योग्य है। तब मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र में और जो कुछ उनमें है, सब प्राणियों को उसके लिए जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के लिए गाते हुए सुना, युगानुयुग स्तुति और आदर और महिमा और सामर्थ रहे। तब चारों प्राणियों ने तथास्तु कहा और पुर्नियों 24 पुर्नियों ने गिरकर दंडवत किया। तो अध्याय 5, जैसा कि हमने कहा, अध्याय 4 की निरंतरता है, लेकिन यह अध्याय 4 के चरमोत्कर्ष के रूप में कार्य करता है। अध्याय 4-5 के लिए यही सेटिंग प्रदान करता है। अध्याय 4 इसी पर जोर दे रहा है और यहीं पर अध्याय 4 में कार्रवाई होती है। यह इन दो अध्यायों का मुख्य फोकस है। हम पहले ही देख चुके हैं कि दोनों के बीच निरंतरता है, क्योंकि अध्याय 4 की कुछ समान छवियां, हम अभी भी स्वर्ग में हैं, स्वर्गीय सिंहासन पर, लेकिन हमने पहले ही सिंहासन और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को नोट कर लिया है। इस अध्याय को पढ़ते समय हमने चार जीवित प्राणियों को फिर से उभरते हुए देखा है। हमने 24 बुजुर्गों को फिर से उभरते देखा है। तो हमारे पास एक ही सेटिंग है, भगवान का सिंहासन कक्ष, लेकिन अध्याय 5 में इस दूरदर्शी खंड में दो अतिरिक्त विशेषताएं उभरती हैं जो इस अध्याय में क्या चल रहा है इसे समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और दो नई विशेषताएं या पात्र पुस्तक या स्क्रॉल और मेमना हैं। ये अध्याय 5 के दो केंद्र बिंदु हैं, पुस्तक या मेमना जिसे जॉन देखता है, और दृष्टि इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। तो अध्याय 5 की शुरुआत ईश्वर से होती है जो सिंहासन पर बैठा है, ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक है, जिसके हाथ में एक पुस्तक है। जाहिर है इस अध्याय का कोई भी समझदार पाठक आश्चर्यचकित होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस स्क्रॉल को पहले नहीं देखा है, आश्चर्य होगा कि स्क्रॉल क्या है, इसमें क्या निहित है, परमेश्वर ने यह पुस्तक अपने दाहिने हाथ में क्यों पकड़ रखी है। दाहिना हाथ अधिकार और शक्ति का प्रतीक है। जो सिंहासन पर बैठा है उसने यह पुस्तक अपने दाहिने हाथ में क्यों पकड़ रखी है, इसमें क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले यह छवि शायद, हालांकि एक स्क्रॉल की छवि में कई स्क्रॉल और दस्तावेजों में एक पृष्ठभूमि या एकाधिक पृष्ठभूमि हो सकती है जो ग्रीको रोमन दुनिया में परिचित रही होगी, जैसे कि दोनों तरफ लिखे गए दस्तावेज जिन्हें जाना जाता है, एक अभिलेख या वसीयत और वसीयतनामा और इस तरह की चीजें। ऐसी कई चीजें हैं जो जॉन के स्क्रॉल से मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन इसके मूल में जॉन का स्क्रॉल मुख्य रूप से अध्याय 2 में ईजेकील की याद दिलाता है, जहां छंद 9 से शुरू होकर यह ईजेकील 2 और 9 है जो ईजेकील के सिंहासन कक्ष के दर्शन का हिस्सा है, अध्याय 1 से शुरू करते हुए जिसे जॉन ने आगे बढ़ाया है। अब अध्याय 2 श्लोक 9 में, फिर मैंने देखा और मैंने देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ है, उसमें एक पुस्तक थी जिसे उसने मेरे सामने खोलकर रख दिया। अब इसे सुनो, इसके दोनों ओर शब्द लिखे हुए थे, तो यहेजकेल को एक स्क्रॉल दिखाई देता है जिसके दोनों तरफ लिखा हुआ है, जो बिल्कुल जॉन के जैसा ही है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ अंतर हैं। यूहन्ना की सात मुहरें हैं और वे उसके सामने नहीं खुलती। कम से कम इस दृश्य में तो ऐसा नहीं है। ईजेकील इसे मुख्य रूप से विलाप, चेतावनी और दुहक के शब्दों के साथ जोड़ता है, जो एक निर्णय विषय है। जॉन हमें ठीक ठीक नहीं बताता कि पुस्तक में क्या था। जैसा कि हमने कहा, ग्रीको रोमन दुनिया में स्क्रॉल के सभी प्रकार के साक्ष्य मौजूद हैं। दानियल 12 में अन्य पुराने नियम की पृष्ठभूमि में दानियल एक सीलबंद स्क्रॉल देखता है, स्पष्ट रूप से एक स्क्रॉल जो सील किया गया है। तो यह सब इस पुस्तक के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जिसे जॉन भगवान के दाहिने हाथ में देखता है, जो दोनों तरफ लिखा हुआ है। फिर एक लोकप्रिय धारणा यह है कि यह स्क्रॉल क्या है। इस स्क्रॉल को एक वसीयतनामा के रूप में समझा जाना चाहिए, जो व्यक्ति की मृत्यु तक सील किया जाने वाला एक वसीयतनामा है। और यीशु मसीह की मृत्यु अब उन्हें वसीयतनामा खोलने और उसकी सामग्री को प्रकट करने में सक्षम बनाती है। अन्य लोगों ने ग्रीको रोमन दुनिया में अन्य प्रकार के स्क्रॉल या दस्तावेजों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और आप विभिन्न प्रकार के विवरण देखने के लिए टिप्पणियां देख सकते हैं, टिप्पणियां पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी है, और फिर से मैं दोहराऊंगा कि प्राथमिक मॉडल ईजेकील 2 और शायद दानियल 12 से आता है, लेकिन साथ ही जॉन एक ऐसी छवि बना रहा है जिसकी ग्रीको रोमन दुनिया से भी प्रतिध्वनि है। लेकिन जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शायद यह है कि इसमें क्या शामिल है। मेरी राय में, और मैं कई अन्य लोगों से सहमत होऊंगा जो कुछ इसी तरह का सुझाव देते हैं, शायद इस पुस्तक में पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए भगवान की योजना शामिल है। पृथ्वी पर मुक्ति और न्याय दोनों लाने की परमेश्वर की योजना। याद रखें, हमने कहा था कि अध्याय 4 के मुद्दे का हिस्सा यह है कि स्वर्ग में दृश्य कैसा है, जहां भगवान की संप्रभुता को स्वीकार किया जाता है, जहां भगवान पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं, जहां सभी स्वर्ग पूजा करते हैं, उसे पृथ्वी पर कैसे स्वीकार किया जाता है और साकार किया जाता है। स्क्रॉल यह योजना है कि यह कैसे होगा। इसमें पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने की योजना शामिल है। इसमें इस वर्तमान पृथ्वी पर न्याय और उद्धार लाने की ईश्वर की योजना शामिल है। अब परमेश्वर उस योजना को संप्रभु रूप से अपने हाथों में रखता है, जिसका प्रतीक एक पुस्तक है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें शाब्दिक स्क्रॉल देखना चाहिए, खासकर तब से जब बाद में मैना आकर इसे ले जाएगा। और आप कैसे कल्पना करते हैं कि एक मेमना सामने आएगा और एक पुस्तक लेगा, कम से कम शाब्दिक रूप से। तो फिर पुस्तक पृथ्वी पर न्याय और मोक्ष के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करने की ईश्वर की योजना के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार का अगला चित्र प्रकट होता है। यद्यपि देवदूत, यद्यपि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, कम से कम प्रकाशित वाक्य 5 के शेष भाग में अगला महत्वपूर्ण चित्र एक देवदूत है। और हम पहले ही सुझाव दे चुके हैं और इस तथ्य के बारे में बात कर चुके हैं कि देवदूत सर्वनाशकारी साहित्य का अभिन्न अंग हैं। आप यहूदी सर्वनाश पढ़ते हैं और आप स्वर्गदूतों को विभिन्न चीजें करते हुए और दृष्टा की दृष्टि के संदर्भ में सर्वनाश में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए पाते हैं, और आप प्रकाशित वाक्य में भी यही चीज घटित होते हुए देखते हैं। बाद में हम देखेंगे कि एक देवदूत जॉन को कुछ चीजें दिखाने के लिए ले जा रहा है। जॉन अक्सर देवदूत प्राणियों के साथ बातचीत में रहता है। दो बार उसे एक देवदूत प्राणी के सामने झुकने और उसकी पूजा करने का प्रलोभन आया। लेकिन यहाँ स्वर्गदूत इस दृष्टि से जॉन को दिखाई देता है और वह अध्याय 5 की मुख्य समस्या को स्पष्ट करने की भूमिका निभाता है, जिसे हल करना है। और इसलिए देवदूत की आवाज एक प्रश्न के रूप में मुख्य समस्या को उठाती है। और वह प्रश्न यह है कि मुहरे तोड़ने और पुस्तक खोलने के योग्य कौन है। तो प्रश्न मुद्दा यह है कि यहाँ ईश्वर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता के रूप में विराजमान है। पुस्तक उसके हाथ में है, वह पुस्तक जिसमें पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने, उद्धार और न्याय लाने की उसकी योजना है। परमेश्वर उस पुस्तक को संप्रभु रूप से धारण कर रहा है। और अब प्रश्न यह है कि संसार में ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान रचयिता है, के दाहिने हाथ से पुस्तक लेकर उसे खोल सके, उसकी सामग्री प्रकट कर सके और उसे व्यवस्थित कर सके। सामग्री गति में यही मुख्य प्रश्न है। और जब जॉन कहता है, जब देवदूत कहता है कौन योग्य है, या जब जॉन कहता है कौन योग्य है कि इसे खोलकर इसके अंदर देखे, तो विचार सिर्फ इसे पढ़ने का नहीं है कि कोई इसे खोल देगा और इसे पढ़ेगा और इसे रोल करेगा, बैकअप लें और कहें ओह यह दिलचस्प था। मैं आपको बताता हूं कि यह किस बारे में था। विचार यह है कि इसे खोलकर और इसे पढ़कर कोई इसकी सामग्री को प्रकट करने में सक्षम होता है और वास्तव में स्क्रॉल की सामग्री को गति में सेट करता है, जो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए भगवान का उद्देश्य है। इसलिए इसे किसी अन्य पुस्तक की तरह केवल पढ़ा जाना नहीं है, बल्कि वास्तव में इसकी सामग्री को गति प्रदान करना है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास में जॉन किसी योग्य व्यक्ति को खोजने के लिए ब्रह्मांडव्यापी खोज पर निकल जाता है। फिर प्रश्न यह है कि पुस्तक खोलने के योग्य कौन है। यही मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर यह अध्याय देता है। यही मुख्य समस्या है जो उठाई गई है। हमें सिंहासन पर बैठे व्यक्ति, ब्रह्मांड के संप्रभु निर्माता, जिसके दाहिने हाथ में पुस्तक है, जो अधिकार और शक्ति का प्रतीक है, के पास जाने और उसे लेने का अधिकार है, उसके पास जाने के लिए योग्य व्यक्ति कहाँ मिल सकता है। स्क्रॉल करें और फिर इसे खोलें और इसकी सामग्री को अधिनियमित करें। इसलिए जॉन ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति को खोजने के लिए ब्रह्मांडव्यापी खोज पर निकल जाता है। यहाँ मुझे जो दिलचस्प लगता है वह यह है कि जॉन अपने स्वयं के दृष्टिकोण में भागीदार बन जाता है। तो वह अभी केवल एक दर्शन नहीं देख रहा है, वह वास्तव में अपने स्वयं के दृष्टिकोण में भागीदार बन जाता है और वह एक यात्रा पर निकल जाता है। हालांकि पाठ हमें यह नहीं बताता है कि उसने ऐसा कैसे किया। पाठ केवल इतना कहता है कि वह पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यात्रा पर जाता है जो स्क्रॉल खोल सकता है, और उनकी खोज का दायरा पूरी तरह से विस्तृत है। वह स्वर्ग में जाता है, सभी स्वर्गों में, जिसमें मैं इसे लेता हूँ, यह सिंहासन कक्ष, स्वर्गीय सिंहासन कक्ष। वह सारे आकाश में जाता है, वह सारी पृथ्वी पर खोज करता है, और इसके अलावा वह पृथ्वी के नीचे भी खोज करता है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि जॉन कोई कसर नहीं छोड़ता। किसी योग्य व्यक्ति की उनकी खोज पूरी तरह से संपूर्ण है। मुद्दा यह भी नहीं है कि भौतिक और भौगोलिक दृष्टि से यह पता लगाया जाए कि ये स्थान कहाँ है। मुद्दा यह है कि यह सार्वभौमिक है और यह संपूर्ण है। ब्रह्मांड का पूरा दायरा, जिसमें स्वर्ग भी शामिल है, और मैं स्वर्गीय सिंहासन कक्ष को उठाता हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए तोड़फोड़ की जाती है जो ऊपर जा सके और इस स्क्रॉल को ले सके, इसे खोल सके और इसकी सामग्री को चालू कर सके। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ यह भी महत्वपूर्ण है, यह बाकी दृष्टि को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह महत्वपूर्ण है कि जॉन को स्वर्ग में कोई भी न मिले। स्वर्ग सभी प्रकार के उत्कृष्ट देवदूत प्राणियों से भरा है, लेकिन जॉन को स्वर्ग में कोई भी नहीं मिला। इन सभी देवदूत प्राणियों में 24 बुजुर्गों और 4 जीवित प्राणियों की तरह और जो भी अन्य श्रेष्ठ शक्तिशाली देवदूत प्राणी स्वर्गीय क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसमें ब्रह्मांड के अन्य सभी स्वर्गीय हिस्से भी शामिल हैं। जॉन को ऐसा कोई नहीं मिला जो योग्य हो, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी, जहाँ आप किसी को ढूंढने की उम्मीद कर सकते हैं। कोई पृथ्वी पर या स्वर्ग में या पृथ्वी के नीचे उम्मीद नहीं कर सकता है, लेकिन स्वर्ग में भी, जहाँ कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की उम्मीद कर सकता है जो इतना शक्तिशाली और योग्य है कि वह पुस्तक खोल सके, जॉन को ऐसा कोई नहीं मिला जो इसे खोल सके। 3 बार ध्यान दें कि जॉन इस बात पर जोर देता है कि कोई भी उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं था। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो परमेश्वर के दाहिने हाथ से पुस्तक लेने, उसकी मुहरें खोलने और उसकी सामग्री को चालू करने के लिए उपयुक्त और उपयुक्त हो। और उसके कारण हमें बताया गया कि जॉन रोता है और रोने लगता है। और यहाँ ग्रीक में निर्माण काफी गहन है, तो यह सिर्फ जॉन का कोने में रोने जैसा मामला नहीं है। यह पूरी तरह रोना पीटना है, निराशा है, क्योंकि उसे पुस्तक खोलने वाला कोई नहीं मिल रहा है। एक तरह से जॉन घबरा रहा है, क्योंकि उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो स्क्रॉल खोल सके। और मेरा प्रश्न, मैं हमेशा इस पाठ को पढ़ता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं इसे एक तरह से सर्वनाशकारी साहित्य के अवशेष के रूप में देखता हूँ। बस यही होता है। कहानी में कुछ रहस्य और दिलचस्पी जोड़ने के लिए जॉन रोता है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो जॉन क्यों रोता है? यदि इस पुस्तक में अपना राज्य स्थापित करने और न्याय तथा मोक्ष लाने की ईश्वर की योजना शामिल है, यदि जॉन को पुस्तक खोलने के लिए कोई नहीं मिला और फिर उसे नहीं मिला, तो उसने ब्रह्मांड के हर कोने में खोजा और कोई नहीं मिला एक योग्य, यदि उसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, तो परमेश्वर के लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है। यदि जॉन को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, तो परमेश्वर के उन लोगों के लिए कोई समर्थन नहीं है जो पीड़ित हैं। यदि ईश्वर नहीं मिल सकता, यदि जॉन किसी को योग्य नहीं पा सकता, तो इस पृथ्वी पर कोई न्याय नहीं है। यदि जॉन को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, तो चर्च की पीड़ा पूरी तरह से व्यर्थ है, और उनका बलिदान, यहाँ तक कि जो मौत के लिए बलिदान देते हैं, वह भी व्यर्थ है। यदि जॉन को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, तो परमेश्वर के लोगों के लिए कोई आशा नहीं है। दुनिया में कोई न्याय नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है, और इसलिए जॉन रोता है, और कोई आश्चर्य नहीं कि वह रोता है। उभरती हैं जो इस अध्याय में क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और 2 नई विशेषताएं या पात्र पुस्तक या स्क्रॉल और मेमना हैं। अध्याय 4 में जिन 24 बुजुर्गों से हमारा परिचय कराया गया था, उनमें से एक ने अच्छी खबर के साथ जॉन के रोने को रोका, अर्थात कोई तो योग्य मिल गया है, कोई तो है जो पुस्तक खोलने के योग्य है। और यही वह व्यक्ति है जिसे 24 बुजुर्गों में से एक यहूदा जनजाति के शेर के रूप में पेश करते हैं। अब मैं यहाँ जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ, क्या यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्या जॉन केवल इसके बारे में सुनता है? बुजुर्ग ने भाषण में जॉन से कहा कि वहाँ कोई है, इसलिए जॉन ने अभी तक इस व्यक्ति को नहीं देखा है। बुजुर्ग बस इतना कहते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति है, यह यहूदा के गोत्र का सिंह है। उत्पत्ति अध्याय 49 और श्लोक 9 और यशाया अध्याय 11 और श्लोक 1 से पुराने नियम की कल्पना का उपयोग करते हुए मसीहा के गोत्र की यह कल्पना यहूदा के शेर से राजा और एक शेर भी। स्वर्गदूत कहता है, यह वही सिंह है जो दाऊद के वंश का यहूदा के गोत्र का है। पुनः यशाया का एक विषय, इस व्यक्ति ने विजय प्राप्त की है या उस पर विजय प्राप्त कर ली है, उसी शब्द का प्रयोग चर्च पर विजय पाने के अध्याय 2 और 3 में किया गया है। अब यहूदा जनजाति का यह शेर, जो मसीहा के रूप में यीशु का स्पष्ट संदर्भ है, ने आपके अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर जीत हासिल की है, जीत हासिल की है या जीत हासिल की है। और इसलिए वह सक्षम है, क्योंकि उसने जीत हासिल कर ली है। वह इसकी सामग्री को प्रकट करने के लिए स्क्रॉल और 7 मुहरों को खोलने में सक्षम है। अब यह दिलचस्प है कि लेखक ने हमें इस बिंदु पर विशेष रूप से यह नहीं बताया कि यहूदा के गोत्र के शेर ने कैसे विजय प्राप्त की। किसी को शक्ति और शक्ति के प्रदर्शन की उम्मीद होगी, शायद सैन्य शक्ति, जैसे कि एक शेर के रूप में और यहूदा के गोत्र से चित्रित किया गया हो। और इसलिए जैसा कि कोई शायद इसे पढ़कर उम्मीद कर सकता है, उसने शक्ति और शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से विजय प्राप्त कर ली होगी। इसलिए वह अब काबू पाने में सक्षम है, या वह अब ईश्वर के दाहिने हाथ से पुस्तक को छीनने में सक्षम है, ताकि इसकी सामग्री को प्रकट करने और सामग्री को गति में स्थापित करने के लिए इसकी मुहरें हटा सकें। और वह फिर से एक अनुस्मारक के रूप में पुस्तक में पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने, मोक्ष और न्याय लाने की भगवान की योजना शामिल है। इस प्रकार जो कुछ है वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है, यदि संपूर्ण नए नियम में नहीं और शायद संपूर्ण बाइबल में नहीं। बुजुर्ग ने भाषण के माध्यम से जॉन का परिचय दिया है, बस उससे संवाद किया है और उसे बताया है कि कोई है, यहूदा के गोत्र से एक शेर है, डेविड की जड़, जो सक्षम है, जो पहले ही जीत चुका है, शायद सेना के विचारों को प्रेरित कर रहा है, विजय और पराक्रम। यह व्यक्ति जीत गया है और जॉन ने यही सुना है। अब जो होता है वह यह है कि जॉन आगे जो देखता है वह यहूदा के गोत्र से एक विजयी शेर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बजाय जब जॉन मुड़ता है तो वह देखता है कि एक मेमना मारा हुआ खड़ा है। उसे एक मेमना दिखाई देता है जो ऐसा लगता है मानो उसका वध कर दिया गया है। तथ्य यह है कि शाब्दिक रूप से पाठ कहता है कि यह वध के रूप में प्रतीत होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जॉन का यह मतलब नहीं है कि ऐसा लग रहा था कि उसने वध किया है, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया था। अधिक संभावना है कि उसका मतलब यह है कि मेमना ऐसा दिखता है मानो उसका वध कर दिया गया था, क्योंकि वह वास्तव में किया गया था, लेकिन अब वह जॉन के सामने जीवित खड़ा है, लेकिन वह अभी भी ऐसा दिखता है जैसे कि उसका वध किया गया था, क्योंकि वह वास्तव में किया गया था। इसलिए जॉन सवाल नहीं उठा रहा है, कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे उसका वध कर दिया गया या मार दिया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो दिलचस्प है वह जॉन और समाधान सुनने के बीच विरोधाभास या तनाव है। समाधान यह है कि जॉन सुनता है कि यहूदा के गोत्र का एक शेर है जिसने जीत हासिल की है, लेकिन जब वह यहूदा के गोत्र के शेर को देखने के लिए मुड़ता है तो उसे कोई शेर नहीं दिखता, वह ठीक इसके विपरीत देखता है। वह एक मेमना देखता है और इसके अलावा एक मेमना देखता है जिसे मार दिया गया है या वध कर दिया गया है। संभवतः इसकी पृष्ठभूमि निर्गमन के फसह के मेमने के साथ साथ यशाया अध्याय 53 से पीड़ित सेवक वह मेमना भी है जिसका वध किया गया था। लेकिन विरोधाभास चौंकाने वाला है, एक शेर जो अब मेमने जैसा दिखता है। यह एक महत्वपूर्ण होगा, वास्तव में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का परिचय देता है जिसे हम प्रकाशित वाक्य में कहीं और देखने जा रहे हैं, और वास्तव में हमें मदद मिलेगी, मुझे लगता है, रहस्योद्घाटन में कुछ अन्य स्थानों को समझने में जो विवादित रहे हैं कि आप उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, और वह यह है। फिर से ब्रिटिश विद्वान रिचर्ड बाउकॉम ने इस विषय को उजागर करने और इसके महत्व को दिखाने के लिए किसी और से अधिक काम किया है, और रहस्योद्घाटन के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जॉन जो सुनता है और जॉन जो देखता है उसके बारे में आपको अक्सर रहस्योद्घाटन में एक तुलना मिलती है। कई बार जॉन कुछ सुनता है जिसके तुरंत बाद जॉन देखता है, और अक्सर वह जो देखता है वह एक अलग कोण से व्याख्या करता है जो उसने सुना था। और इसलिए यहाँ जॉन जो सुनता है वह यहूदा के गोत्र का एक शेर है जो जीतता है, लेकिन जो वह देखता है वह कुछ नहीं है। इसलिए ये दो अलग अलग संस्थाएं या दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। वह एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन जो वह देखता है उसका अर्थ यह हो जाता है कि उसने क्या सुना था। उसने सुना कि यहूदा के गोत्र का एक सिंह है जो जीत गया है, परंतु जब वह देखने के लिए मुड़ता है तो उसे यहूदा का सिंह नहीं दिखता, वह एक मेमने को देखता है जो मारा गया है। तो सवाल यह है कि मेमने ने कैसे विजय प्राप्त की है? यहूदा के गोत्र का सिंह कैसे पराजित हुआ? यह मेमना पुस्तक लेने के योग्य कैसे है? यह उसकी पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से है। अर्थात परमेश्वर ने कैसे विजय प्राप्त की है और विजय प्राप्त की है, और मेमने ने कैसे विजय प्राप्त की है? वह अपनी पीड़ा और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। वह अपने बलिदान के माध्यम से और मेमने की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वह वही है जो मर चुका है और अब जीवित है। वह पुस्तक लेने और उसकी मुहरें खोलने और उसकी सामग्री को प्रकट करने के योग्य है, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए घटनाओं को गति दी गई। तो रोमन साम्राज्य के विपरीत ऐसा लगता है जैसे जॉन विजय का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता है। रोमन साम्राज्य को तलवार से जीता गया, उन्होंने हिंसा से जीता, उन्होंने सैन्य शक्ति से और अपने साम्राज्य का विस्तार करके जीता। अब इसके विपरीत जॉन विजय का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो पूरी तरह से इसके विपरीत है। अर्थात यीशु मसीह अपने कष्ट, मृत्यु और अपने बलिदान के माध्यम से विजय प्राप्त करते हैं, और यह उनका पुनरुत्थान है जो उन्हें सही ठहराता है। तो यह उसे पुस्तक लेने के योग्य बनाता है, और वास्तव में यह इस बात का भी एक मॉडल बन जाता है कि उसके चर्चों पर कैसे काबू पाना है। तो फिर से अध्याय 2 और 3 में उन लोगों से एक वादा किया गया था जो विजय प्राप्त करेंगे। उन पर काबू कैसे पाया गया? उन्हें कैसे जीतना और विजयी होना था? उसी प्रकार मेमना भी अपने विश्वासयोग्य कष्ट सहते हुए गवाही देता है, और अपने वफादार बलिदानी साक्ष्य के माध्यम से चर्च उसी तरह से जीत हासिल करेगा जैसे मेमना करता है। फिर आगे क्या होगा? फिर से आपको क्रिया की कई क्रियाएं, सूचक क्रियाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं जो कहानी और दृश्य को साथ लेकर चलती हैं। मुझे लगता है कि श्लोक 7 में हम पाते हैं कि अध्याय 5 का चरमोत्कर्ष क्या है। हर चीज इसी ओर ले जा रही है। अंतः 7 में मेमना आया और उसने जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। यह सीन का क्लाइमेक्स है। वास्तव में ली गई क्रिया का क्रियाकाल ग्रीक में पूर्ण काल कहलाता है, जो उन काल में से एक है जिसका उपयोग लेखक किसी गतिविधि को अग्रभूमि में करने के लिए कर सकता है, ताकि उसे बाकी सभी चीजों से अलग किया जा सके। और जॉन इस क्रिया के ग्रीक में पूर्ण काल के रूप का उपयोग करके बिल्कुल यही कर रहा है। जॉन चाहता है कि यह बात कायम रहे। यह चरमोत्कर्ष है। यह अध्याय 5 का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण दृष्टिकोण इसी ओर ले जा रहा है। यह देवदूत द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान है। स्क्रॉल कौन ले सकता है? यहां वह है, वह मेमना जो अपनी बलि के द्वारा मारा गया और जीता गया, अब आने और उसके दाहिने हाथ से पुस्तक लेने के योग्य है जो सिंहासन पर बैठा है। अब मुझे लगता है कि इससे जो प्रश्न उठता है उनमें से एक यह है कि वह कौन है जो सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के पास जा सकता है और उसके हाथ से पुस्तक छीन सकता है। याद रखें, यह सर्वोच्च ईश्वर है जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके हाथों में न्याय और मोक्ष के लिए पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने की योजना है। कौन सीधे ऊपर चलकर उसके हाथ से पुस्तक छीन सकता है? ऐसा करने के लिए कौन योग्य और उपयुक्त है? और यह भी ध्यान दें कि यह दिलचस्प है कि मेमना, और यह उस चीज से संबंधित है जिसका हमने पहले उल्लेख किया है। यह दिलचस्प है कि मेमना एक तरह से सिंहासन से बाहर आता है। आप अचानक नहीं देखते हैं, जैसा कि आप विज्ञान कथा फिल्मों या कुछ इसी तरह के कुछ दिलचस्प दृश्यों में देखते हैं। आप भीड़ को अलग होते और किसी योद्धा को सिंहासन की ओर बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। आप मेमने को बाहर से आते हुए नहीं देखते हैं, या बस आप जानते हैं, ओह, मुझे वहां खड़े उस व्यक्ति की याद आती है। और फिर मेमना आता है और सिंहासन कक्ष में प्रवेश करता है। इसके बजाय मेमना सिंहासन के केंद्र से निकलता है, वह बाहर से नहीं आता। इसके अलावा हम पहले ही कह चुके हैं, याद रखें, जॉन ने स्वर्ग सहित हर जगह देखा है। तो ऐसा नहीं है कि यह वह व्यक्ति है जिसे जॉन ने मिस कर दिया। जॉन ने पूरे स्वर्ग में देखा और उसे नहीं मिला। और ओह, यहाँ इसे इस तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है जैसे ओह वह मेमने से चूक गया। किसी तरह वह मेमने को देखने में असफल रहा। नहीं, उसे हर जगह देखा गया है। उसने पूरे आकाश में खोजा और उसे कोई नहीं मिला। तो इससे सवाल उठता है कि वह कौन व्यक्ति है जो सिंहासन तक चल सकता है और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के दाहिने हाथ से पुस्तक ले सकता है। और यह कौन व्यक्ति है जो सिंहासन से बाहर आता है जब जॉन पहले से ही पूरे स्वर्ग में देख चुका है, और यहाँ तक कि सबसे ऊंचा स्वर्गदूत भी स्क्रॉल लेने के योग्य नहीं है। यह कौन व्यक्ति है जो सिंहासन से बाहर आता है और अब सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के दाहिने हाथ से पुस्तक लेता है? मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो ब्रह्मांड में किसी भी अन्य से महान है, यहां तक कि सर्वोच्च, सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली देवदूत प्राणी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। यह ईश्वर और समस्त सृष्टि के बीच विभाजन करने वाला व्यक्ति है। यह व्यक्ति विभाजन के ईश्वरीय पक्ष पर खड़ा है। यह वह व्यक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व को साझा करता है। यह वह व्यक्ति है जो अद्वितीय है और कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है, जैसा कि मुझे लगता है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का शेष भाग प्रदर्शित करेगा। लेकिन अब जब महत्वपूर्ण घटना घट चुकी है और दुविधा सुलझ गई है, तो पुस्तक खोलने के योग्य कौन है? अब जबकि किसी को योग्य पाया गया है, लेकिन विडंबना यह है कि उसकी बलिदानी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से, और अब जब स्क्रॉल लेने की घटना हुई है, अब दुविधा हल हो गई है। अब हम शेष अध्याय के लिए तैयार हैं, जहां स्वर्ग इस अनोखी घटना का जवाब देने जा रहा है। अगली बार हम मेमने द्वारा पुस्तक लेने और उसे खोलने और उसकी सामग्री को अधिनियमित करने की तैयारी करने पर स्वर्ग की प्रतिक्रिया को देखेंगे। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 9 है, प्रकाशित वाक्य 4 और 5 जारी है।